The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो, गुड इवनिंग। सोमवार 28 नवंबर का दिन भर आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो पर। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। चीन की सड़कों पर हंगामा बरपा है। करीब एक दर्जन शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ। तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने लोगों पर इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है? कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये पॉलिसी और क्या ये प्रोटेस्ट चीनी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, जानेंगे। केंद्र सरकार ने मदरसों को लेकर बड़ा फैसला किया है। मदरसों में पहली से आठवीं क्लास तक की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो समझेंगे कि इस स्कॉलरशिप को लाने के पीछे क्या मंशा थी और अब जब ये हटाया जा रहा है इसको, तो इसके पीछे की दलीलें क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए दाखिल किए गए PIL पर केंद्र सरकार ने आज एक एफिडेविट सबमिट किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार इसकी गंभीरता समझती है और इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाएगी। तो पिछले साल इसी PIL को खारिज करने के बाद कोर्ट इसकी सुनवाई क्यों कर रहा है और फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ कई राज्यों में ऑलरेडी कानून है, वो कितने सक्सेसफुल हैं, समझेंगे। और आखिर में केरल चलेंगे, जहां तिरुवनंतपुरम के एक इलाके में अडानी पोर्ट के निर्माण के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट कल उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया और इसमें कई लोग घायल हो गए। तो पता करेंगे कि ये मामला क्या है, हिंसा के पीछे कौन लोग थे और क्या कार्रवाई हुई है अब तक। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से।
शुक्रिया जमशेद। श्रद्धा हत्याकांड मामले के आरोपी आफताब पर हमले की कोशिश, दिल्ली में फॉरेंसिक ऑफिस के बाहर हुई घटना। सूरत में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में पथराव। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे आम आदमी पार्टी संयोजक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, गुजरात ATS ने UP के बदायूं से पकड़ा। साउथ दिल्ली के स्कूल में बम की खबर निकली अफवाह, ईमेल पर भेजी गई थी धमकी। केरल के विजिंझम प्रदर्शन मामले में राज्य सरकार सख्त, कोर्ट में बोली प्रदर्शनकारियों से वसूलेंगे हर्जाना। पश्चिम बंगाल SSC स्कैम मामले में पार्थ चटर्जी को झटका, CBI कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। 6 दिनों से दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, हैकर्स ने मांगे 200 करोड़। महाराष्ट्र के ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में 7 छक्के जड़कर रचा इतिहास, विजय हजारे ट्रॉफी में जमाया दोहरा शतक।
ये दिन भर है और मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में जमकर तबाही मचाई। कोरोना वेव्स ने करोड़ों लोगों की असमय ही जान ले ली। कोविड की आमद के साथ लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट दुनिया भर में फॉलो किया गया और इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए कई तरह की सख्तियां की गई। वक्त के साथ वैक्सीन आए और धीरे धीरे कोविड का डर भी खत्म हो गया। कुल मिलाकर सिचुएशन बैक टू नॉर्मल हो गई, लेकिन कोविड का जो ओरिजिन था चीन, वहां अब भी कई तरह की पाबंदियां और सख्ती बरती जा रही हैं। सरकार इसे जीरो कोविड पॉलिसी कहती है और वहां के कई शहरों में इसे स्ट्रिक्टली लागू किया गया है। लेकिन इसके खिलाफ चीन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को चीन के उरुमकी में 21 मंजिला एक इमारत में जबरदस्त आग लगी, जिसमें लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। जिस अपार्टमेंट में आग लगी थी वो इमारत कोरोना की वजह से सील कर दी गई थी। ऐसे में आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और लॉकडाउन की वजह से बचाव कार्यों में भी बहुत दिक्कतें आईं। उरुमकी में हुई इस घटना ने आग में घी का काम किया और लोगों में पनप रहे आक्रोश को कई गुना बढ़ा दिया। बीजिंग से लेकर शंघाई, वुहान, चेंगदू और लांगझू जैसे शहरों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और लॉकडाउन और RT-PCR टेस्ट के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। चीन का फाइनेंशियल हब माने जाने वाले शंघाई में रविवार रात को हजारों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। वीकेंड पर भारी संख्या में कई यूनिवर्सिटीज के छात्र भी सरकार के विरोध में उतर आए। लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और शी जिनपिंग से इस्तीफा भी मांगा। तो चीन की इस जीरो कोविड पॉलिसी से वहां के लोगों को क्या समस्या है, कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये पॉलिसी कि इतने लार्ज स्केल पर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पूछा मैंने दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर रितु अग्रवाल से।
अगर हम जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर चले तो कोविड के अगेंस्ट जो उन्होंने स्ट्रगल शुरू करी थी वो 2019 से कर रहा था, क्योंकि चाइना में कोविड 2019 में आया था, बाकी जगह धीरे धीरे फैला है। तो वो लोग वहीं से 2019 से स्ट्रिक्ट मेजर लेके चले थे, लॉकडाउन और मास्क लगाना है और इवन सप्लाईज, सब तरह की सप्लाई जो थी, फूड सप्लाई, राशन सप्लाई सबको घर पे दी गई थी। तो अभी इन लोगों को काफी टाइम हो गया है, अगर हम देखा जाए तो 3 साल हो गए हैं चाइना के लोगों घर में बैठे बैठे और इस तरह से हर समय लॉकडाउन में रह के। शुरू शुरू में चीन की जो ये कोविड पॉलिसी लेकर काफी कुछ प्रशंसा हुई थी, काफी लोग कह रहे थे कि चीन के मॉडल को बनाकर हमें भी इस तरह से कोविड के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। लेकिन अभी जबकि सारी कंट्रीज में सब कोविड रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो गए हैं, सब जगह न्यू नॉर्मल एक तरह का सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन चाइना अभी भी वही सबको लॉकडाउन में प्रेशर में मतलब घरों में बंद करके इस तरह से अभी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनको टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, अब बिल्कुल बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो गई है। तो मुझे लगता है कि एक ये इस तरफ इशारा है कि अब वो इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं, दे वॉन्ट देयर फ्रीडम, उनको अपनी आजादी चाहिए, उनको कुछ और, चाइनीज गवर्नमेंट को कुछ और मेजर सोचने की जरूरत है जिससे वो कोविड केस के अगेंस्ट लड़ सकें। क्योंकि इस तरह से सिर्फ लोगों घर में बैठा देने से, जबकि केसेस इतने ज्यादा नहीं है और ये वायरस भी अब इतना सीवियर और इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो इस सिचुएशन में सिर्फ लोगों को बोल देना कि आप घर में बैठिए, बाहर नहीं आ सकते, सप्लाई जितनी भी है घर में पहुंच जाएगी, आई थिंक अभी जो है आज जो चीन की जनता है वो इस तरह के आश्वासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि चीन की सरकार उनकी उनके हित के लिए काम कर रही है।
रितु जी, चीन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना सामान्य बात तो नहीं है और वो भी इतने दिनों से इतने बड़े लेवल पर ये पहुंच गया है जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो लोगों की नाराजगी इस पॉलिसी से है या शी जिनपिंग से भी नाराज हैं वो?
इनफैक्ट जब इस तरह की न्यूज सामने आई, क्योंकि चीन एक ऐसा कंट्री है जहां पे प्रोटेस्ट इस लेवल के कभी भी अलाउ नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अब तक सीपीसी का जो रूल था चाइना में बहुत ही लेजिटिमेट तरह से चल रहा था, जिसमें एक तरफ से चीन की जनता को प्रॉस्पेरिटी, एक तरह की उन्हें आजादी, एक तरह का उन्हें पैसा और एक तरह के सारे लग्जरी, सारे उनको सुख सुविधा मिल रही थी और इसलिए चीन की सरकार के खिलाफ कोई भी अब तक कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जा रहा था। तो 1992 के बाद से लेके 1992 से लेकर अब तक दो तत्वों को मिलाकर स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, कैसे हमें सामाजिक व्यवस्था को बना के चलना है और कैसे हमें चीन की जनता के लिए विकास लेके आना है, इन सब पहलू को पकड़कर काफी अच्छी तरह से चला। लेकिन अभी शी जिनपिंग, जबकि 20th पार्टी कांग्रेस के समय, उस समय भी काफी कुछ प्रोटेस्ट हुई थी कि लग रहा था कि बेबी शी जिनपिंग दोबारा से तीसरी बार फिर से अपना नेतृत्व नहीं ले पाएंगे, लेकिन उस समय फिर भी उनका नेतृत्व हो गया और 20th पार्टी कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन उस समय भी 20th पार्टी कांग्रेस में भी जो हुचिंताओ का एपिसोड था, जिस तरह से हुचिंताओ को एक तरह से 20th पार्टी कांग्रेस से हटाया गया, वो भी लोगों को बहुत बहुत ही ज्यादा ये आश्वासन नहीं हो रहा है कि कहीं शी जिनपिंग एम्परर तो बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जितनी भी स्लोगन है जो प्रोटेस्ट के एक समय उठाए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं लोग कि हमें एम्परर नहीं चाहिए, हमें अपनी सरकार चाहिए। सो कहीं उन्हें लगता है लोगों को कि शी जिनपिंग बहुत ही ज्यादा सत्ता में आकर अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना कर लें। तो एक तरह से ये जो आप देखें, जितनी भी ये प्रोटेस्ट हो रही है, आप जो बीजिंग में देखिए, शंघाई में देखिए या और भी जगह, हनान या इवन शिनचियांग में, जो शिनचियांग को चीन की जनता एक तरह से सेपरेटिस्ट रीजन के रूप में प्रमोट करती थी कि कहीं यहाँ पे इस्लाम को लेकर या जो वहाँ की एथनिक माइनॉरिटीज हैं, वो उनको मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, उनको आगे आना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में। लेकिन आज देखिए चीन की सारी जनता, एक वो शिनचियांग में जो फायर जो हुआ था और उसमें 10 लोग मारे गए, उसको लेके सभी लोग इकट्ठे बाहर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी प्रोटेस्ट एक बहुत सिम्बॉलिक तरह से है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जैसे बुरुमुची रोड जो बीजिंग में है, उस पे वो अपना एक कंसोलेशन या उन लोगों को जो लोगों ने अपनी जान दी है उनके लिए एक गार्लैंड दे रहे हैं या फिर उनका रोड पे कुछ इस तरह से उनको ऑफर कर रहे हैं। तो इनकी जो प्रोटेस्ट है वो बहुत सिंबॉलिक तरह से है, जिसमें वो एक तरह की सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो इस तरह से, और आज जनता कह भी रही है कि हम शिनचियांग के साथ हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से सब लोग इस समय एकत्रित होकर और एकजुट होकर इस एक अथॉरिटेरियन जो ने लग रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म चीन में जो आ रहा है, तो वो एक जनता की डिमांड है कि हम अथॉरिटेरियनिज्म इतना ज्यादा नहीं लेके चलेंगे, बल्कि चीन की सरकार को एक सोशली रेस्पॉन्सिबल सरकार की तरह भी अपना रोल अदा करना है। 20 पार्टी कांग्रेस के समय भी शी जिनपिंग ने कहा था कि हमारी जो पॉलिसी है वो पीपल्स सेफ्टी के लिए है, लोगों की सुरक्षा के लिए है। तो ये सब पॉलिसी जो थी, एक दो साल सही थी, जब कोविड का भी वेव बहुत डेंजरस थी और लोगों की वैक्सीन भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया है और लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक बहाना तो नहीं है लोगों को बंद रखने का, जिससे लोग बाहर ना आए और चीन अपने आप चुपचाप उन्हें कोविड की आड़ में अपने आप कुछ भी करना चाहते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा चुनौती बन गया है अभी चीन की सरकार के लिए कि वो इस तरह के प्रदर्शन के लिए क्या तरीके से उनको रेस्पॉन्ड करेंगे।
शुक्रिया रितु अग्रवाल। फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन का मुद्दा राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बना रहता है। अब ये मामला पिछले एक साल में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जबरन धर्मांतरण को लेकर एक याचिका दाखिल की है। 14 नवंबर को इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर चिंता भी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन की समस्या गंभीर है और ये राष्ट्रहित के खिलाफ है और नेशनल सिक्योरिटी के भी खिलाफ है। कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा था और केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर उचित कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने कहा कि वो इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत हैं, महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे कानून की जरूरत है। वैसे अश्विनी उपाध्याय ने पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया था और रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की थी और तब 3 जजों की बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। तो इस एक साल में ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोर्ट ने इसे न सिर्फ सुनवाई के योग्य माना बल्कि इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ते हुए केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा। ये पूछा मैंने सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो की लीगल करस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर से।
देखिए, पिछले साल जब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी तब सवाल यही उठा था कि क्या कोर्ट इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित कर सकती है या नहीं, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये कानून को बदलने का है। उसके बाद अब ये जब नई याचिका आई तो ये एक पर्टिकुलर केस को आधार बनाकर आई है, जो लावण्या वाला कांड हुआ था हैदराबाद में, जो 17 साल की लड़की की मृत्यु हुई थी, जिसमें ये आरोप लगा था कि फोर्स्ड कन्वर्जन के चलते ये मुद्दा उठा है, इस वजह से लावण्या ने अपनी जान ले ली है। तो इस मुद्दे को क्रक्स बनाकर ये नई पिटिशन आई है, जिसकी वजह से कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ठीक है, अगर इस तरह के सिचुएशंस हो रही हैं, अगर इस तरह के केस आ रहे हैं तो ये मुद्दा सुनने लायक है। हमें देखना होगा कि हम किस तरह से इसको सुन सकते हैं। अभी ये भी याद रखिएगा कि कोर्ट ने सरकार से ये सवाल किया है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो इसमें क्या आदेश पारित करेंगे। दूसरी बात ये कि उस वक्त जब याचिका ये आई थी तब अश्विनी उपाध्याय ने स्वयं ही ये मैटर जो है ये वापस ले लिया था। उसके बाद वो दिल्ली हाईकोर्ट गए और फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में वो ये मुद्दा लेकर आए इस लावण्या कांड के बाद। और ये अगर आप देखें तो एक ऑब्जेक्शन भी है जो इंटरवीनर्स ने उठाया है, सेम पॉलिटिकल रीजन से ये मुद्दा लेकर क्यों बार बार ये इश्यू उठाया जा रहा है। तो अभी हमें देखना होगा कि कोर्ट इसको किस तरह से सुनती है, क्योंकि अभी इसमें इफेक्टिव सुनवाई जो होती है, जिसको कहते हैं कि कोर्ट कुछ ध्यान से सुन रहा है इस मुद्दे को, वो अभी तक नहीं हुई है। अभी तक कोर्ट ने सिर्फ सरकार से पूछा है कि देखिए इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, हमें लग रहा है ये कुछ सीरियस है, आप बताइए क्या हो सकता है इस पर।
अनीशा, ओडिशा, MP, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड और UP जैसे दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में पहले से ही जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है। ये कितने सक्सेसफुल रहे हैं, क्या कोई डेटा है पब्लिक डोमेन में?
देखिए, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके जवाब के लिए कोई डेटा फिलहाल हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट ये अगर आप देखें तो जब पैंडेमिक के दौरान 2020 में ही जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एंटी कन्वर्जन कानून बनाया था, तब इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी देश भर में कि ये एंटी कन्वर्जन कानून के अंतर्गत क्या कितने कभी FIR हुई हैं या कितने कभी कन्विक्शंस हुए हैं। उस वक्त जब डेटा निकला था तब ये बात हुई थी कि FIRs तो कई हुई हैं जेल, लेकिन अक्विटल हुए हैं उसके बाद सब लोगों के, क्योंकि FIRs कई बारी किसी के पेरेंट्स ने कर दिए है कि हमारे बच्चे ने जाकर कन्वर्जन कर लिया है, भागकर शादी कर ली है और कन्वर्जन हो गया है। तो इन सब मुद्दों पर अगर आप देखें तो जो सबसे पुराने कानून है मध्य प्रदेश का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, अरुणाचल का है, अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बहुत सारे राज्यों ने पिछले 1.5-2 सालों में ये कानून बनाए हैं, तो FIRs तो इसमें होती रही हैं, लेकिन अगर आप कन्विक्शन एक्विटल रेट को देखें तो साफ है कि इस कानून से ज्यादातर ये जो समाज में एक तरह का जो डर रहता है कि किसी के बेटी को, किसी के बेटे को बरगला कर कुछ करवाया जा रहा है, उस डर के चलते FIRs तो हो रही हैं, लेकिन जब कोर्ट के सामने मुद्दा जाता है, जब कोर्ट सवाल पूछती है कि क्या ये बरगलाना था कि या फिर उनका कोई डिसीजन खुद ही हुआ है, तब उस मुद्दे पर जाके ये फिर केस अटक जाते हैं। और ज्यादातर केसों में जो हमने देखे हैं, या तो बहुत सालों तक कुछ हुआ ही नहीं है, या अगर हुआ है तो सीधे फिर एक्विटल हुआ है। तो कन्विक्शन रेट इस केस में थी, और ये मैं आपको 2020 में जो थोड़ा बहुत डेटा निकला था उसकी बता रही हूं कि कम से कम मध्य प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में जो एक आध राज्यों में ये मैटर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जहां पर ट्राइबल एरियाज बहुत हैं उन राज्यों में ये सबसे पहले कानून बने थे, क्योंकि उस वक्त उन राज्यों में ये डर बैठा था कि ट्राइबल्स को कन्वर्ट किया जा रहा है, खासतौर से क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर ये मुद्दे उठे थे कि मिशनरीज जो हैं वो स्कूल का या दवाई का या कुछ नौकरी का हवाला देकर लोगों से कन्वर्जन करवा रहे हैं। लेकिन अंत में हमने देखने को ये मिला है कि कन्विक्शन बहुत ही रेयर ओकेजन्स में, कभी अगर एक इक्का दुक्का कभी कहीं हुआ हो तो हुआ है, लेकिन डेटा जो ऑफिशियल डेटा जो है वो कहीं नहीं है कलेक्टेड।
शुक्रिया निशा माथुर। केरल के तिरुवनंतपुरम में अडानी सी पोर्ट के निर्माण को लेकर 3 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये खबर कल उस वक्त सुर्खियों में आई जब प्रदर्शनकारियों ने विझिंजम थाने पर हमला कर दिया और जमकर तोड़ फोड़ की। घटना में 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इससे पहले परसों भी तिरुवनंतपुरम में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था और 5 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। कहा गया कि इसी के चलते गुस्साए भीड़ ने कल थाने पर हमला कर दिया और हमले के बाद इलाके में गहरा तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए 200 एक्स्ट्रा पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। दरअसल अडानी सीपोर्ट के निर्माण को लेकर तिरुवनंतपुरम के जो लोकल लोग हैं उनके कुछ कंसर्न्स हैं और इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं घटना के बाद केरल के कानून और उद्योग मंत्री पी राजीव ने पोर्ट कंस्ट्रक्शन के समर्थन में बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश का 77% एक्सपोर्ट कोलंबो सीपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन विझिंजम सीपोर्ट भी ऐसा कर सकता है जो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ये पूरा मामला है क्या, कौन सी मांगे हैं तिरुवनंतपुरम के लोगों की अडानी ग्रुप से, यही सब जानने के लिए मैंने बात की केरल में आज तक रेडियो रिपोर्टर शिवी मोल से।
वो इस पोर्ट के खिलाफ इसीलिए है क्योंकि वो लैंड वो लोग कई सालों से जनरेशन से उधर रह रही है, तो उनके लिए वो लैंड से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और वो लोग कह रहे हैं कोस्टल इरोशन ज़्यादा हो जाएंगी अगर अडानी पोर्ट, विझिंजम पोर्ट उधर आ जाएंगी तो कोस्टल इरोशन ज़्यादा होगा। तो उन्होंने 7 डिमांड्स गवर्नमेंट के आगे रखा है, उनके लिए घर चाहिए और काम घर, उनका फिशिंग, वो लोग फिशरमैन कम्युनिटी से है तो फिशिंग के लिए भी तकलीफ होगी अगर वो पोर्ट आ जाएंगी, तो उनके लिए जॉब, घर, ये सब पूछा था डिमांड्स में, वो सब गवर्नमेंट ने अग्री किया। बट 6th और 7th डिमांड गवर्नमेंट ने नहीं अग्री किया, क्योंकि 6th डिमांड ये था उनके लिए केरोसिन, फ्री में केरोसिन देना चाहिए, और वो केरोसिन अभी अभी पोर्ट मिनिस्टर ने कहा है, केरल की पोर्ट मिनिस्टर ने कहा वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि केरोसिन फ्री में देने के लिए गवर्नमेंट सेंटर की अनुमति चाहिए, तो इसीलिए वो परमिशन वो नहीं होगा। और 7th डिमांड ये है कंस्ट्रक्शन स्टॉप करनी चाहिए, अडानी पोर्ट की कंस्ट्रक्शन स्टॉप करनी चाहिए और कोस्टल इरोशन के बारे में एक स्टडी करनी है और वो कमिटी एक कमिटी फॉर्म करनी है और वो उस कमिटी में प्रोटेस्टर्स की साइड से प्रोटेस्टर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स भी होना चाहिए और जब ये कमिटी कहेंगी कि इधर कोस्टल इरोशन और ऐसा कुछ नहीं होगा फिर पोर्ट आने के लिए वो ठीक है बट अभी ये सब डिमांड्स पूरी करनी है सेवन डिमांड्स पूरी करने के बाद ही वो पोर्ट उधर आने को ये लोग मान जाएंगी और गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि पोर्ट मिनिस्टर ने आज कहा कि एवरी टाइम मीटिंग होते हैं इन लोगों के बीच प्रोटेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच मीटिंग्स होती है और उस सब मीटिंग्स में नई नई डिमांड्स लेकर आती है प्रोटेस्टर्स वही यही बोला गवर्नमेंट ने तो बहुत महीने तक ये प्रोटेस्ट चल रही है और गवर्नमेंट ने बहुत सारे मीटिंग्स भी बुलाया था ये डिस्कस करने के लिए बट अभी तक ये सेवन डिमांड्स इनका मेन डिमांड ये है ये कंस्ट्रक्शन हॉल्ट करनी चाहिए कंस्ट्रक्शन स्टॉप करनी चाहिए।
शिवी केरल के उद्योग मंत्री जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं कहा है कि जब पोर्ट का निर्माण अपने अंतिम चरण में है तो हिंसा क्यों भड़क रही है क्या लोगों की जो मांग है उस पर क्या पहले सहमति नहीं बनी थी जो अभी हिंसा भड़क उठी है।
ये प्रोटेस्ट अगस्त 17 को इनडेफिनिट प्रोटेस्ट की तरह शुरू किया था प्रोटेस्टर्स ने और ये प्रोटेस्ट लैटिन कैथोलिक आर्च डायसिस हेड कर रही है और उस दिन से अभी तक आज तक की प्रोटेस्ट चल रहा है और गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच जैसे मैंने कहा पहले बहुत सारे मीटिंग्स डिस्कशंस हुआ था बट फिर भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं हुआ नतीजा नहीं मिला जो गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स चाहती थी वो नहीं हुआ। अदानी ग्रुप ने हाईकोर्ट को अप्रोच किया था हाईकोर्ट ने बोला किसी भी हालत में कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है कंस्ट्रक्शन हॉल्ट पे नहीं रख सकते हैं और पुलिस और गवर्नमेंट को भी हाईकोर्ट ने क्रिटिसाइज किया और उसके बाद कल सैटरडे कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट करने के लिए फिर से शुरू करने के लिए ये सब मटेरियल्स वगैरह लेकर लॉरीज और ये सब आया था और प्रोटेस्टर्स ने वो ब्लॉक किया और पुलिस ने क्लोज टू 50 पीपल के खिलाफ केस रजिस्टर किया था उसमें से एक को कस्टडी में अरेस्ट भी किया था तो पूछने के लिए चार लोग गए थे विरिजम पुलिस स्टेशन और वो चार लोगों को भी पुलिस ने कस्टडी में रखा और उसके बाद बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वो सब पुलिस स्टेशन पे आके उनके बारे में पूछा और वो क्लैश में एंड किया और बहुत सारे और प्रोटेस्टर्स कह रही है फादर्स को प्रीस को पुलिस ने अटैक किया इसीलिए लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ और वो लोग भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके पुलिस ऑफिसर्स को अटैक किया और पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे इंजर्ड है 36 क्लोज टू 36 यही नंबर बोला है ADGP ने यही बोला है 36 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड है और वो सब लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और फिर रात को सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आना पड़ा और वो लोग आके रात 12 बजे एक मीटिंग हुआ था और उसके बाद ही सिचुएशन थोड़ा शांत हुआ और अभी भी एक मीटिंग चल रहा है।
हिंसा के बाद प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है और आप क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं तो करंट सिचुएशन क्या है वहां की क्या सब कुछ कंट्रोल में है।
अभी एक ऑल पार्टी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है और उसमें प्रोटेस्टर्स की तरफ से प्रोटेस्टर्स की रिप्रेजेंटेटिव्स और गवर्नमेंट की तरफ से कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब लोग आके एक मीटिंग हो रहा है अभी भी चल रहा है वो मीटिंग और वो लोग पीसफुल मैनर से पीसफुल तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और आज हाईकोर्ट ने केरला गवर्नमेंट से पूछा कि ऐसे कैसे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल में ऐसे कैसे हुआ और क्या क्या मेजर्स लिया है केरला गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ने बोला है बहुत सारे पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और इनका जो भी डैमेजेस हुआ उन सब का कॉम्पनसेशन प्रोटेस्टर्स की हाथ से लेंगे और फ्राइडे तक गवर्नमेंट के लिए फ्राइडे तक टाइम दिया है कोर्ट ने और अदानी ग्रुप ने भी बोला है सिक्योरिटी चाहिए कंस्ट्रक्शन अगर होनी है तो और सिक्योरिटी चाहिए तो अभी मीटिंग चल रहा है और बहुत पीसफुल तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में है सब लोग।
शुक्रिया शिवी मोल। केंद्र सरकार ने मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप बंद कर दी है। अभी तक मदरसों में 1ली से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 1,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को अलग अलग कोर्स के हिसाब से स्कॉलरशिप दी जाती थी। केंद्र के इस फैसले के बाद 9वीं और 10वीं के छात्रों को पहले की तरह ही स्कॉलरशिप मिलती रहेगी और उनके आवेदन लिए जाएंगे। हाल ही में यूपी सरकार ने भी मदरसों को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था खत्म की थी। पिछले साल यूपी के करीब 16,500 मदरसों में 4 से 5 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। इस बार भी नवंबर में मदरसों के बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे बंद करने का फैसला किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी, इसके पीछे रीजन क्या था। यही जानने के लिए मैंने बात की लखनऊ में आज तक रेडियो रिपोर्टर आशीष श्रीवास्तव से।
देखिए, जब स्कॉलरशिप लागू की गई थी, सबसे पहले मकसद यही था कि जो मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और उसके साथ साथ उनको पढ़ने के लिए बुक्स हैं या जो जरूरत की चीजें हैं वो खुद ले सकें, और यही वो वजह थी कि ये स्कॉलरशिप काफी सालों से लगातार बच्चों को दी जा रही थी। 1 to 8 क्लास में जितने भी मदरसे हैं उन सभी छात्रों को स्पेशली इसलिए भी दी जाती थी कि चाहे वो उनके छोटे अरेंजमेंट हो, चाहे बुक्स को लेना हो या अपने स्वेटर मोजे लेना हो, किसी भी तरीके की जो जो स्कूल से संबंधित हो वो ले सकते हैं। तो उसके एवज में छात्रवृत्ति लोगों को लगातार ये छात्रों को दी जाती रही है। तो अब ये वही वजह थी जिसकी वजह से सरकार मानती थी कि ये छात्रों की रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है, और उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए इस छात्रवृत्ति के रूप में उनको पैसा दिया जाता रहा है, और उसके लिए वो आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद अप्रूव्ड होता है और ये एफिलिएटेड जितने भी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और इसके साथ साथ जो एडेड मदरसे हैं उनको ये छात्रवृत्ति दी जाती रही। तो इसके लिए बकायदा एक पोर्टल होता था, उस पोर्टल पे ये सभी अपना आवेदन करते थे। आवेदन करने के बाद वेरीफाई होता था, सरकार एक फंड रिलीज करती थी और उस फंड के बाद सारे मदरसों में सभी छात्रों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया इसका कि क्यों दिया जाता था और इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है।
आशीष, जब से स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, इससे उन्हें कितना फायदा मिला?
सरकार तो अपने लेवल से एक अलग तरीके का सर्वे करा रही थी, उसमें एफिलेशंस और नॉन एफिलेशंस के जो मदरसे थे उनको वेरीफाइड किया जा रहा था। उसके लिए 11 पॉइंट का एक बिंदु भी दिया गया था, उन्हीं पे किया जा रहा था। लेकिन जो छात्रवृत्ति है वो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही 2013 के अप्रोक्सी बंद कर दी थी, तो वो छात्रों की नहीं आ रही थी जो मदरसे में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी छात्रवृत्ति, उसका जो ये था वेरीफाइड करने का कि किन किन छात्रों को दिया जाए, तो उससे डेवलपमेंट तो छात्रों का लगातार हो रहा था, क्योंकि जो बेसिक नीड्स थी अगर हम टीचरों के मुताबिक माने या वहां के प्रिंसिपल्स के मुताबिक माने कि छात्रों की बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जो वो चूंकि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा काफी ज्यादा नीडी होता था और उसके पास छोटी छोटी चीजें लेने का पैसा नहीं होता था, तो वो बेसिक चीजों की वजह से वो अपने जो पैसे मिलते थे उससे वो पूरी कर लेता था। और यही वो वजह है कि उनको काफी सहूलियत हो गई थी इससे कि सरकार एटलीस्ट उनको पैसा देती है जिससे वो उन चीजों की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते। लेकिन सरकार इसको यूटिलाइज कर रही थी पूरी तरीके से और माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा लाभ था, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था थी माइनॉरिटीज के लिए, उन मदरसों के लिए जो कि अब बंद की जा चुकी है।
आशीष, ये बताइए कि केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप बंद करने के पीछे की वजह क्या बताई है?
जिस तरीके से ये बंद किया गया तो उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों को, उसके तहत जो सरकार है वो उनको निशुल्क ड्रेस उपलब्ध कराती है, उसके साथ साथ मिड डे मील जो दोपहर का खाना होता है वो उपलब्ध कराती है, और उसके साथ साथ छात्रों के लिए जो ड्रेस है वो भी उपलब्ध कराती है। तो राइट टू एजुकेशन के तहत आने वाले जो अन्य विद्यालय है जब उसमें सभी चीजें मुफ्त मुहैया कराई जा रही है, सरकार का मानना है कि अब ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उन पैसों से वही चीजें लेते थे जो सरकार अब दे रही है। तो ऐसी स्थिति में वो चीजों को अगर सरकार फ्री दे रही है जैसा उसका मानना है, तो ऐसे में उन्होंने छात्रवृत्ति को बंद कर दिया क्योंकि बाकी अन्य चीजें निःशुल्क दी जा रही थी। हालांकि जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स और जो छात्र हैं उनका ये मानना था कि वो जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल थी, और उसकी वजह से वो अपने कई सारे ऐसे काम थे जिसको वो कर सकते थे, लेकिन सरकार ने अचानक से बंद किया। आपको बताएं कि पिछले साल ही तकरीबन 6 लाख जो छात्र थे उनको छात्रवृत्ति दी गई थी, और इस बार भी जो आवेदन थे नवंबर 15 तक मांगे गए थे, और ये कहा गया था कि 6 लाख जो आवेदन है आवेदनकर्ताओं ने आवेदन किए थे और उनको अब छात्रवृत्ति मिलनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आवेदन हो गया था और उसके बाद वो तकरीबन 6 लाख जो छात्र हैं अब उनको अचानक से एक फैसला आता है कि अब उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो उनके लिए भी बड़ा ये शॉकिंग है कि जिस तरीके से सरकार ने अचानक इस स्कॉलरशिप को बंद किया है, उनके भी कई रास्ते बंद हो गए हैं, और यही मानना था कि इस स्कॉलरशिप के जरिए उनके कई ऐसे काम थे जो जुड़े हुए एजुकेशन से वो पूरे हो सकते थे, लेकिन अब नहीं हो पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आशीष श्रीवास्तव। तो आज के दिन भर में बस इतना ही। सोमवार को आज तक रेडियो का एक और पॉडकास्ट आता है, नाम है नामी गिरामी। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना की कहानी लेकर आए हैं इसमें नितिन ठाकुर, उसको जरूर सुनिएगा। और हमारे पॉडकास्ट को लेकर अगर आपको कुछ कहना सुनना हो तो मेल कीजिए radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा 9953233303। चाहे तो अपना फीडबैक अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके सीधे यहाँ भेज सकते हैं। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने, साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की, जमशेद कमर सिद्दीकी के साथ थे आप। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।